आज है 15 अगस्त दिन बुधवार। सभी सुनने वालों को राजेश जोशी का नमस्कार। आजादी की 72वीं वर्षगांठ पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया,
मां भारत का कोई संतान वे अंतरिक्ष में जाएंगे।
हमने पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा से संपर्क किया और पूछा, स्पेस में जाने पर क्या दिल धड़कता है?
साहब, अगर दिल ना धड़कता हो तो जिंदा कैसे हो रहेगा बंदा।
और आज दुनिया जहान में सुनेंगे कि तुर्की में मुद्रा संकट की वजह क्या है।
वार्निंग दे रहे हैं अमेरिका और यूरोप वाले की, आप सुधर जाइए नहीं तो और बुरे दिन आपको सामना करना पड़ेगा।
पर सबसे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। भारत के 72वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से दिए संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत साल 2022 तक अंतरिक्ष में किसी भारतीय को भेज देगा। मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत देश के 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। मोदी ने सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं को स्थायी सेवा देने की घोषणा भी की है। उन्होंने कहा कि काला धन रखने वालों, भ्रष्टाचार करने वालों और बलात्कार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। केरल में हो रही भारी बारिश और बाढ़ की वजह से कोच्ची एयरपोर्ट को शनिवार तक के लिए बंद कर दिया गया है। पानी के एयरपोर्ट की इमारत में घुसने के बाद उड़ानें रद्द कर दी गईं। केरल के अधिकतर बांधों को खोल दिया गया है। सैकड़ों गांव पानी में डूब गए हैं। भूस्खलन की वजह से सड़क और रेल मार्ग ध्वस्त हो गए हैं। अभी तक बाढ़ की वजह से 40 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। केरल सरकार ने हालातों को अभूतपूर्व कहा है और मुख्यमंत्री का कहना है कि उनकी प्राथमिकता लोगों को साफ पीने का पानी मुहैया कराना है। इटली में धराशायी हुए एक पुल के मलबे को हटाने का काम अभी चल रहा है। इस हादसे में अब तक 39 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कल हुए हादसे के बाद से 10 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। अग्निशमन दल के प्रवक्ता के मुताबिक 400 बचावकर्मी रात भर बचाव कार्य में जुटे रहे। जिनेवा प्रांत की मिलिट्री पुलिस के कमांडर रिकार्डो स्कायुतो ने कहा,
Beh, una fase difficile per tutti perché siamo arrivati ad un numero di vittime molto elevato.
ये हम सब के लिए बहुत मुश्किल समय है क्योंकि हताहतों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। हमें अभी भी कुछ लोगों को जिंदा मिलने की उम्मीद है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा हमारे लिए हालात मुश्किल होते जाएंगे। वहीं इटली के प्रधानमंत्री जुसेपे कोंटे ने समूचे इटली में पुलों की सुरक्षा जाँच के आदेश दिए हैं। परिवहन मंत्री का कहना है कि इटली में हाईवे की देखभाल करने वाली एजेंसी को भंग करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं एजेंसी का कहना है कि वह सभी सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हुए पुल की देखभाल कर रही थी और हर 3 महीने में सुरक्षा जांच की जा रही थी। तुर्की में नजरबंद एक अमरीकी पादरी की याचिका को एक स्थानीय अदालत ने खारिज कर दिया है। पादरी एंड्रयू ब्रंसन तुर्की और अमरीका के बीच विवाद का केंद्र बन गए हैं। अब उच्च अदालत में उनकी याचिका पर सुनवाई होगी। तुर्की ने ब्रंसन पर चरमपंथी संगठनों से संबंध रखने के आरोप लगाए हैं, जिन्हें वो खारिज करते हैं। बीते सप्ताह अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की से आने वाले स्टील और एल्युमिनियम पर टैक्स बढ़ा दिया था। इसके जवाब में आज तुर्की ने कई अमरीकी उत्पादों पर टैक्स बढ़ा दिए हैं। अमरीका के साथ आर्थिक और कूटनीतिक तनाव की वजह से तुर्की की मुद्रा में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है। तुर्की के राष्ट्रपति के प्रवक्ता इब्राहिम कालीन ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते तभी बेहतर होंगे जब अमेरिका इस मामले में पीछे हटेगा। उन्होंने कहा,
अमेरिकन yönetiminin Türkiye'deki yargı süreçlerine saygılı olması gerekir. Yani bir takım açıklamalarla
अमेरिकी प्रशासन को तुर्की की न्याय व्यवस्था का सम्मान करना ही होगा। उन्हें तुर्की की न्याय व्यवस्था को प्रभावित करने के प्रयास बंद करने चाहिए और दबाव बनाने वाले बयान बंद करने चाहिए। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक शिक्षा केंद्र पर हुए धमाके में कम से कम 25 लोग मारे गए हैं और 35 से अधिक घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक पश्चिमी काबुल में स्थित शिक्षा केंद्र के छात्रों को निशाना बनाते हुए आत्मघाती हमलावर ने धमाका किया। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर। मैं हूँ राजेश जोशी। भगवा रंग की पगड़ी और झक सफेद कुर्ता पाजामा पहने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 72वें स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के लाल किले से पिछले 4 साल की अपनी उपलब्धियों का ब्यौरा देश के सामने रखा। उन्होंने इस दौरान शुरू की गई विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इनका फायदा गरीब तबके के लोगों को मिलेगा। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच 5वीं बार प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को लाल किले से संबोधित किया। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि भारत अंतरिक्ष में मानव भेजेगा। सुनेंगे कि आम लोगों ने इस भाषण पर क्या प्रतिक्रिया जाहिर की, पर पहले प्रस्तुत है फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
काली रेंज रोवर एसयूवी का प्रधानमंत्री का काफिला तकरीबन 7 बजे के आसपास लाल किले के लाहौरी गेट पहुंच गया। सलामी और दूसरे कुछ कार्यक्रमों के बाद शुरू हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण, जिसमें उन्होंने देशवासियों को 72वें स्वतंत्रता दिवस की मुबारकबाद दी और उन्हें याद दिलाया कि भारत अब दुनिया की 6वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और आर्थिक और सामाजिक रूप से सबसे पिछड़े नागरिकों में से एक आदिवासी समाज के कुछ युवकों ने विश्व की सबसे ऊँची चोटी एवरेस्ट पर फतह हासिल कर लिया है। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और जलियांवाला बाग को याद किया, जहाँ हुए हार को अगले साल 100 बरस हो जाएंगे। जिन इलाकों में बाढ़ आए हैं वहां के लोगों से उन्होंने सहानुभूति जताई और फिर तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती को याद किया।
अमर निलियई ऐडुम नन
यानी भारत दुनिया को बंधनों से मुक्ति पाने का रास्ता दिखाएगा। इसके बाद लेकिन प्रधानमंत्री की स्पीच लगभग उनके पुराने भाषणों से लगने लगी, जिसमें अपनी सरकार की उपलब्धियों को उन्होंने गिनाया और पिछले 70 सालों में कुछ न होने की बात कही गई और फिर कुछ बड़े वायदे किए गए। कांग्रेस नेतृत्व वाली मनमोहन सिंह सरकार के समय के पॉलिसी पैरालिसिस का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, अब भारत को लेकर सोच बदल गई है।
सोया हुआ हाथी अब जग चुका है, चल पड़ा है। सोए हुए हाथी ने अपनी दौड़ शुरू कर दी है और दुनिया के अर्थवेत्ता कह रहे हैं आने वाले 3 दशक तक विश्व की अर्थ ताकत को भारत गति देने वाला है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अब अपनी तकनीक के बल पर मानव को अंतरिक्ष में भेजेगा।
हमारे देश ने संकल्प किया है कि 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे तब मां भारत का कोई संतान वे अंतरिक्ष में जाएंगे, हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के जाएंगे, तब विश्व के अंदर हम 4थे देश बन जाएंगे जो मानव को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाले बन जाएंगे।
उन्होंने मंगल पर भेजे गए सैटेलाइट मंगलयान का भी जिक्र किया। मंगलयान का लॉन्च साल 2013 में हुआ था, तब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनका दौर ईमानदारी के उत्सव का दौर है, जब टैक्स देने वालों की संख्या 4 करोड़ से बढ़कर लगभग 7 करोड़ पहुंच गई है और बिचौलियों के बुरे दिन आ गए हैं। कश्मीर के मुद्दे पर उनका कहना था,
वाजपेयी जी ने कहा था इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत, इन 3 मूल मुद्दों को लेकर के हम कश्मीर के विकास के लिए चाहे लद्दाख हो, चाहे जम्मू हो या श्रीनगर वैली हो, संतुलित विकास हो, समान विकास हो, वहां के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण हो, हम गोली और गाली के रास्ते पर नहीं गले लगा करके मेरे कश्मीर के देशभक्ति से जीने वाले लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 82 मिनट लंबी स्पीच का खात्मा इस कविता पर किया।
हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, जीत है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है, एक भारत नया बनाना है।
जय हिंद और वंदे मातरम के नारों के बाद प्रधानमंत्री ने पानी पीना शुरू ही किया था कि राष्ट्रगान शुरू हो गया। फैसल मोहम्मद अली, BBC दिल्ली।
प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर आम लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए हमारे संवाददाता सड़कों पर निकले और उन लोगों से बात की जिनके वोट से सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। पहले सुनते हैं पटना के लोग क्या कहते हैं।
यह संदेश बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने कहा कि पूरे भारतवासियों के 5 लाख जीवन बीमा का घोषणा कर यह संदेश भारतीय नागरिकों के हित में जो किया वह बहुत सराहनीय कार्य है।
मैं समझता हूं कि चुनावी ख्याल से भी या देश के ख्याल से भी कोई खास बातें देश के प्रधानमंत्री के लिए उनकी वक्तव्य नहीं थी। देश के अगले चुनाव और बोर्ड के ख्याल से करते तो भी कई योजनाओं के गरीबों के लिए घोषणा करते, लेकिन ऐसा कोई बात न था, इसलिए यह साधारण ही बात।
प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में महिला सुरक्षा पर कई सारे बातें कही, जो घटना पटना में घट रही है उसके जिक्र तक नहीं किया। मुझे बुरा लगा, प्रधानमंत्री हो या सीएम हो, दोनों का भाषण भाषण ही लगा।
कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको लगता है, हम लोग को लगता है कि वो देश के तरक्की से मतलब खुश नहीं है, उनको लगता है कि देश का तरक्की हो रहा है तो ये व्यक्ति अपने काम से प्रभावित जनता को कर रहा है, मतलब कि आलोचनात्मक दृष्टि से इनके काम को वो देखते हैं, क्योंकि मनसा मोदी को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो नहीं आ पा रहे हैं।
पटना के बाद आइए सुनते हैं राजस्थान के जयपुर शहर के लोगों की आवाजें।
भाषण बढ़िया था, भाषण की शैली अच्छी है देने की, और ये तो जमाना मेरे दोस्त ये इसका है, जो जितना भावनाओं में पब्लिक को बहका देगा वो ये गेम जीत जाएगा, बाकी और कुछ नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। किलोमीटर तक चले जाओ, जो मर रहे हैं वो ता जिंदगी तक मरते रहेंगे, आम आदमी के लिए कोई नहीं है, क्योंकि ये तो तंत्र ही लूट तंत्र है।
बहुत बढ़िया था, बड़ी इंस्पायरिंग था। दूसरा, उन्होंने अपने जो वर्क किए उनका सारा इलस्ट्रेटिव फॉर्म में काफी विस्तृत जानकारियां दी लोगों को,
सभी चीजें उसमें तो अपने काफी गौर सुना, तो काफी मतलब कुछ उसका ऐसा लगा कि प्रभावशाली था।
जो कह रहे हैं वो उनको करना भी तो चाहिए ना, औद्योगिक में कह रहे हैं, औद्योगिक तो ऐसी हालत खराब हुई पड़ी है कामों की, तो वो सही करनी चाहिए, अब वो किस तरह से करेंगे वो जाने। यहाँ तो आम जनता तो परेशान ही है, सब निराशा तो है, थोड़ी नहीं बहुत होती है, जब इंसान के पास काम नहीं होता और रिटर्न नहीं आती तो फिर निराशा तो होती है। इस चीज को बढ़िया करने वाली बात है कि क्या करते हैं वो, इस चीज
प्रतिक्रिया उन्होंने अच्छी दिया, मगर करे तो भी है ना भाई, वो उस चीज को करे तो भी है, प्रतिक्रिया देने से खाली ये तो होता नहीं है कुछ।
बहुत अच्छा भाषण था उनका, और आने वाले टाइम में इन सभी का रिजल्ट आने वाला है।
और छत्तीसगढ़ में रायपुर के लोगों ने कुछ इस तरह प्रधानमंत्री के भाषण पर प्रतिक्रिया जाहिर की।
रुपये अभी सबसे न्यूनतम स्तर तक जा चुका है, ऐसे में अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो उसका असर नजर क्यों नहीं आ रहा है? व्यापारी क्यों बार बार ये कहता है कि धंधा जो है वो पहले की तरह नहीं रहा, इन सालों में जो बिक्री है वो कम हुई है, निवेश जो है वो भी कम, बहुत अच्छा देश में नहीं आया है।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि अगर स्वच्छता मिशन को भारत पूरी तरह से फुलफिल करे, पूरी तरह से लागू करे, 2019 तक 3 लाख बच्चों की जान बचा सकते हैं, जबकि इसका क्लेम प्रधानमंत्री ने अगस्त 2018 में ही कर डाला कि हम 3 लाख बच्चों की जान बचा चुके हैं। अब इसकी एक और वानगी देखिए कि इन्होंने कहा कि हम किसानों के लिए गेहूं 24-25 रुपए किलो में गेहूं खरीदते हैं किसानों से और फिर उसको बांटते हैं, जबकि गेहूं का समर्थन मूल्य ही 17.35 रुपए। तो इतना तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना मोदी जी के ही बस का है, और हमेशा की तरह उन्होंने अपनी आदत को बखूबी निभाया है।
मैं छत्तीसगढ़ का ही रहने वाला हूँ, और हमें जो है धान का समर्थन मूल्य 1750 रुपए मिल रहा है, हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि वो 32 रुपए किलो वाला चावल कहाँ से ला रहे हैं।
तो ये थी कुछ आम लोगों की आवाजें, और आपने कुछ ही देर पहले सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी की 72वीं वर्षगांठ से पहले अंतरिक्ष में मानव भेजने का ऐलान किया। दरअसल उन्होंने 75वीं वर्षगांठ से पहले मानव भेजने का ऐलान किया था। राकेश शर्मा भारत के एकमात्र अंतरिक्ष यात्री हैं जो 34 साल पहले 2 अप्रैल 1984 को तत्कालीन सोवियत संघ के कजाखस्तान स्पेस स्टेशन से सोयूज T-11 से अंतरिक्ष में गए थे। इस उपलब्धि के लिए उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। अब राकेश शर्मा रिटायरमेंट के बाद बेंगलोर में रहते हैं। आज दूसरे नागरिकों की तरह उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुना। मैंने राकेश शर्मा से उनकी अंतरिक्ष यात्रा के अनुभवों के बारे में बातचीत की, और मैंने पहला सवाल पूछा कि यह ऐलान सुनकर उनके दिमाग में क्या ख्याल आया।
दिमाग में यही आया कि 30 वर्षों से ज्यादा मेरी ये इंतजार थी ये बात सुनने की, और जैसे बाकी भारतीय हैं मैं भी उनकी तरह उत्सुकता से बैठा हुआ था, और सुकून मिला कि फाइनली ये हो गया है, ऐलान कर दिया गया है, और अभी इंतजार है कि 2022 जल्द से आए और भारतीय एक बार फिर अपनी टेक्नोलॉजी पे, अपने रॉकेट पे, अपने देश से अंतरिक्ष में जा पाएगा।
लेकिन फर्क है राकेश शर्मा जी दूसरे भारतीयों में, यानी हम जैसे भारतीयों में और आप में, क्योंकि आप पहले भारतीय हैं जो स्पेस में गए थे।
वो तो हूँ जी, मगर ये बात अलग ही होगी क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारी होगी। और मैं पिछले 30 सालों से यही कहता आया हूँ कि मैं जरूर पहला भारतीय था, अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए अपने वैज्ञानिकों के दिमागी बल पे अगर आप सफलता आपने प्राप्त की है तो वो बात ही अलग होती है।
अच्छा, एक अपने अनुभव से बताएंगे कि जब लिफ्ट ऑफ होता है, रॉकेट के अंदर आप बैठे होते हैं, उस वक्त क्या कैफियत होती है, उस वक्त दिल धड़कता है क्या?
साहब, अगर दिल ना धड़कता हो तो फिर जिंदा कैसे हो जाएगा बंदा। बात ऐसे है कि दिल धड़कता है, हाँ धड़कता तो है,
लेकिन वो डर से धड़कता है,
ज्यादा तेजी से धड़कता है थोड़ा बहुत, क्योंकि ये रोज का काम नहीं है और रिस्की काम है। तो इसकी वजह से ये सोच आती है कि ये जो काम है ये, क्योंकि मैं जब मैं बैठा हुआ था रॉकेट में, आई वॉज अ फाइटर पायलट ऑलरेडी, और फिर उसके बाद ये मेरा काम था और ये पहली बार रिस्की काम मैंने किया नहीं था, तो मैंने उसको उस नजरिए से देखा था।
अच्छा, एक बार जब आप स्पेस में पहुंच जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, उस वक्त हमें तो बचपन की याद है, आपने कहा था इंदिरा गांधी से आपकी बात हुई थी, और आपने क्या कहा था फिर से बताइए।
उन्होंने पूछा था कि वहां से भारत कैसे दिखता है, कैसे लगता है, तो मैंने बिल्कुल सच्चे दिल से कहा था कि सारे जहां से अच्छा, क्योंकि वाकई में भारत अंतरिक्ष से बहुत ही प्यारा दिखता है।
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
जी।
इंसान का अंतरिक्ष में जाना कोई अब नई बात नहीं रही, तमाम मुल्कों ने भेजा है, हिंदुस्तान इससे अगर इंसान को भेज भी देता है, आप भी गए, क्या हासिल होगा, क्या उपलब्धि होगी, क्या अचीव करना चाहता है हिंदुस्तान?
भाई, उपलब्धि यही होगी कि ये विज्ञान की जो बाउंड्री है वो आगे बढ़ाएगी। सो ये जो विज्ञान है, विज्ञान के लिए ही नहीं किया जाता बल्कि काफी और उसके फायदे भी होते हैं, तो इसीलिए अभी जो जब जाएगा, आप ये मत भूलिए कि हमारी सिविलाइजेशन का भविष्य अंतरिक्ष में है, क्योंकि कल को अगर कोई एस्टेरॉयड अगर इंपैक्ट हुआ तो ये हमारी पूरी एग्जिस्टेंस इज अंडर थ्रेट, तो फिर कहीं और जाके बसना जरूरी है। हमारे जो रिसोर्सेज हैं धरती पे वो मतलब कितने साल चलेंगे।
आप कभी सोचते हैं ये कितना गहरा है स्पेस, अंतरिक्ष कितना अनंत है, इंसान कितना छोटा है, जैसे हम लोगों के दिमाग में ये बात आती है, आप क्या बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से सोचते हैं या आपके भी फैंटेसी है कुछ?
ये वाले जो काम है ये कॉम्प्लेक्स होते हैं और इसके ऊपर काफी पैसे खर्चे होते हैं, इस पे रेपुटेशन राइड करती है, मगर आपका ये कहना ठीक है, अंतरिक्ष में जाने की जरूरत नहीं, हम सबको पता है कि कॉस्मोस कितनी बड़ी चीज है और हमें बहुत कम ज्ञान है उसके बारे में, और इसी वजह से जो मनुष्य है वो एक्सप्लोरर है असलियत में अंदर से, इसीलिए तो सिविलाइजेशन जो अफ्रीका से निकली थी कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, नॉर्थ पोल साउथ पोल पूरी विश्व में लोग बस गए हैं, तो ये एक्सप्लोरेशन की वजह से ही हुआ है। तो वाजबी बात है कि आदमी ये भी देखना चाहेगा कि आगे और क्या हो सकता है, हमारी सीमाएं किधर हैं सोच की और विज्ञान की।
भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा, ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर, मैं हूं राजेश जोशी।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
तुर्की एक ऐसा देश जिसका कुछ हिस्सा यूरोप और कुछ एशिया में पड़ता है। यूरोप और एशिया के बीच पुल का काम करने वाला यह देश इन दिनों आर्थिक संकट से जूझ रहा है। यहां की मुद्रा लीरा में पिछले एक साल से लगातार गिरावट आती जा रही है, जबकि उससे पहले यह काफी मजबूत स्थिति में थी। लेकिन इस गिरावट से अकेला तुर्की ही परेशान नहीं है, बल्कि अन्य देश भी इस बात को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। यहां तक कि भारतीय मुद्रा रुपया जब डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 70 पार कर गया, इसके पीछे भी तुर्की के हालात को जिम्मेदार बताया जा रहा है। लीरा के लड़खड़ाने का कारण क्या है और तुर्की के शक्तिशाली राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोगान इसे संभाल क्यों नहीं पा रहे हैं, इस बार दुनिया जहान में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की है आदर्श राठौड़ ने।
दुनिया जहां
değiştirin ve bunlara karşı en önemli cevabı milletçe hep birlikte verin. Var mıyız buna? Hazır mıyız buna?
ये आवाज थी तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगान की, जो एक कार्यक्रम में मौजूद लोगों से पूछ रहे थे कि क्या वो अपने पास रखी विदेशी मुद्रा और सोने को तुर्की की मुद्रा लीरा में बदलवाने के लिए तैयार हैं। समर्थकों की भीड़ से आवाज आई, हाँ हम तैयार हैं। इस तरह की नौबत इसलिए आ गई क्योंकि तुर्की की मुद्रा लीरा में पिछले एक साल में 40% की गिरावट आई है। 16% गिरावट तो एक हफ्ते में ही आ गई। पिछले कुछ सालों से तुर्की की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी है। पिछले साल तो ग्रोथ रेट 7% रहा, लेकिन एक साल में ऐसा क्या हो गया कि उत्साहजनक प्रदर्शन कर रही तुर्की की मुद्रा में अचानक कमजोरी आ गई। तुर्की की अंकारा यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर ओमेर अनस कहते हैं कि अमेरिका के दबाव के कारण ऐसा हो रहा है।
बहुत दिनों से तेल के दाम जो नीचे जा रहे थे और उसका फायदा तुर्की को मिल रहा था, और तुर्की ने यूरोप जाने वाली गैस पाइपलाइन तुर्की से गुजरती हैं, ईरान को कनेक्ट करती हैं, उसका फायदा सीधे तुर्की को मिलता था। लेकिन जब से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, उसके बाद से ही उन्होंने ईरान को लेकर के अपनी नीति बहुत ही सख्त कर ली है और ईरान के ऊपर दबाव बनाने लगे हैं। रशिया के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बन गया है, उसकी वजह से चाइना के ऊपर दबाव बनाया गया है, और अब टर्की के ऊपर भी ये बैन एक दबाव बनाया गया है कि वो 20% एक्स्ट्रा उनको टैक्स स्टील के जो है उस पर देने पड़ेंगे। तो इन सब चीजों को लेकर के टर्की के ऊपर सबसे ज्यादा दबाव आया है, और इसकी वजह से ये मुद्रा का जो एक बहुत ही अचानक प्रभाव पड़ा है, जिसको हम लोग करेंसी क्रैश कह रहे हैं, वो सामने नजर आ रहा है।
अमेरिका और तुर्की पुराने सहयोगी रहे हैं। उनका आपसी सहयोग दूसरे विश्व युद्ध के दौर से शुरू हुआ। तुर्की 1952 से नेटो का हिस्सा भी है। तो क्या दोनों देशों के रिश्ते एक साल में ही बदल गए? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मध्य पूर्व मामलों के प्रोफेसर आफताब कमाल पाशा बताते हैं कि इसकी शुरुआत आज से 16 साल पहले ही हो गई थी।
2002 से जब से ये जस्टिस और डेवलपमेंट पार्टी एर्दोगान की AK पार्टी जो कहलाती है सत्ता में आई है, इन्होंने कई कदम उठाए। पहला तो उन्होंने ये लोगों को बताया तुर्की के कि ये इस्लामिक पार्टी है, और जो सेक्युलरिज्म 1923 से जो अतातुर्क के जमाने से तुर्की में था वो ढकोसला है। और 2003 में जब अमेरिका इराक पे हमला किया, वो तुर्की के जरिए फौज भेजना चाहते थे, एर्दोगान पर्सनली ने उन्होंने खिलाफ किया और वहां से जाने नहीं दिया। और उस दौरान से हर एक कदम उनका जो उठाया गया है, जो नाटो के खिलाफ था या तो अमेरिका के खिलाफ डायरेक्टली था।
साल 2016 में तुर्की में एक सैन्य विद्रोह हुआ था, जिसमें एर्दोगान के तख्तापलट की नाकाम कोशिश की गई थी। इसी साल तुर्की में लंबे समय से काम कर रहे अमेरिकी पादरी एंड्रयू ब्रंसन को गिरफ्तार कर लिया गया था। उस दौरान अमेरिका ने एंड्रयू को रिहा करने की मांग की थी, और तुर्की ने ये मांग नहीं मानी तो उसने प्रतिबंध लगा दिए। प्रोफेसर ओमेर अनस मानते हैं कि तख्तापलट की घटना के बाद बहुत सारी चीजें बदली हैं।
एंड्रयू ब्रंसन, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो मुख्य मुद्दा है दोनों देशों के बीच में, मेरा ख्याल है कि सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, बल्कि अगर आप देखेंगे कि 2016 में जब राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान को हटाने के लिए फौजी बगावत हुई थी, तो उस फौजी बगावत के खिलाफ रूस ने जितना साफ मत व्यक्त किया था और उसको रिजेक्ट किया था, लेकिन उसी वक्त अमरीका ने, जो कि इसका नाटो अलाई भी है, उसने जो पोजिशन ली थी वो बहुत ही डामाडोल थी। रजब तैयब एर्दोगान और उनकी पार्टी, तब से अमरीका को लेकर के बहुत ही एक अविश्वास का माहौल बन गया है।
तुर्की और यूरोप के कई देशों के बीच कारोबारी रिश्ते हैं, और उनके निवेशकों का एक दूसरे के यहाँ भारी निवेश भी है। ऐसे में अगर लगातार तुर्की की मुद्रा गिरती रहती है तो तो उससे पश्चिमी अर्थव्यवस्था भी खासी प्रभावित होगी। प्रोफेसर आफताब कमाल पाशा बताते हैं कि अभी तो तुर्की को सिर्फ चेतावनी दी जा रही है।
ज्यादा प्रेशर तुर्की पर नहीं डालना चाहते हैं, जिससे यूरोप और अमेरिका और उनके साथियों का नुकसान और बढ़ता जाए। तो ये वार्निंग दे रहे हैं अमेरिका और यूरोप वाले की आप सुधर जाइए, नहीं तो और बुरे दिन आपको सामना करना पड़ेगा।
क्या तुर्की की खराब आर्थिक हालत के लिए बाहरी हालात ही जिम्मेदार हैं? अरदोगान इस साल जून में हुए चुनावों में 52% से ज्यादा वोट हासिल करके दोबारा राष्ट्रपति चुने गए थे, लेकिन उनकी अपनी नीतियां भी कुछ ऐसी रही हैं जिनके कारण उनकी आलोचना होती है, जैसे कि अपने दामाद को वित्त मंत्री बनाना। अगर अमेरिका का दबाव बढ़ता रहा तो क्या अरदोगान अपने देश को इन हालात से बाहर निकाल पाएंगे? उन्होंने देशवासियों से सहयोग की अपील की है, क्या उन्हें जनता का समर्थन मिल पाएगा? प्रोफेसर आफताब कमाल पाशा बताते हैं कि इसकी संभावना कम ही है।
वो जो है 52% से ही उनको विक्ट्री हुई, जो कि ऑलमोस्ट आधा तुर्क उनको सपोर्ट नहीं करता रहा, रेफरेंडम में हो या इलेक्शंस में हो या दूसरे अन्य स्टेप्स में। तो वो तुर्की जो है पोलराइज हो गया है सेकुलरिस्ट और इस्लामिस्ट के बीच में, सपोर्ट ये पब्लिक से मांग रहे हैं। ये सिर्फ 50% जिन्होंने उनको वोट दिया या सपोर्ट दिया नेशनलिज्म के बेसिस पे, शायद डॉलर के मामले में या सोना चांदी जो भी रखे हैं उसके मामले में मदद करेंगे, लेकिन वो काफी नहीं होगा।
इस पूरे विवाद का एक और पहलू है सीरिया में चल रहा गृह युद्ध। जब से सीरिया के कुर्द विद्रोहियों ने अलग कुर्दिस्तान राष्ट्र की मांग उठाना शुरू किया, तुर्की को ये बात पसंद नहीं आई। प्रोफेसर ओमेर अनस,
अमेरिका ने सीधे तौर पर जो कुर्दिश बागी हैं सीरिया के उनको सीधा समर्थन दिया है, उसमें जो अपना नाटो अलाई है तुर्की को भी विश्वास में ले लिया है, जिसकी वजह से जो बहुत सारे बड़े हथियार जो हैं वो कुर्दिश विद्रोहियों के हाथ में सीधे तौर पर दिए गए हैं। तुर्की ने साफ कर दिया कि वो इन कुर्दिश विद्रोहियों के खिलाफ वो अकेले ही कार्रवाई करेगा, चाहे उसमें अमेरिका उनका साथ दे या न दे।
इस मामले में ईरान के साथ साथ इसराइल और फलस्तीन का मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। प्रोफेसर आफताब कमाल पाशा मानते हैं कि तुर्की चाहे तो ईरान पर लगे प्रतिबंधों को बेअसर कर सकता है और साथ ही इसराइल और फिलिस्तीन के मामले पर भी दिक्कतें पैदा कर सकता है, क्योंकि उसने हाल ही में इस्लामिक देशों के बीच अपना प्रभाव बढ़ाया है।
ये जो तुर्की का पोजीशन है अमेरिका के खिलाफ जा सकता है, क्योंकि जो भी लीकेज होगा सैंक्शंस में ईरान के खिलाफ तुर्की उसको बेअसर कर देगा, क्योंकि हर चीज जो ईरान चाहता है तुर्की के जरिए और उसके जरिए चीन के जरिए आ सकता है।
अरदोगान 2 साल से कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके तुर्की की अर्थव्यवस्था को पश्चिमी अर्थव्यवस्था से हटाकर एशियाई इकोनॉमी के तौर पर उभारा जाए। इसी कारण अरदोगान लगातार चीन, रूस और भारत की तरफ देख रहे हैं, लेकिन जानकार मानते हैं कि अपने पुराने दोस्त अमेरिका से एकदम दूर होना तुर्की के लिए आसान नहीं है। हालांकि ये दोनों ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां से शायद वो अपने रास्ते अलग करने वाले हैं। ऐसे में जब तक तुर्की और अमेरिका के बीच की ये तनातनी खत्म नहीं होती, तब तक लीरा में सुधार होने की गुंजाइश कम ही है।
तुर्की में मुद्रा संकट, आदर्श राठौर प्रस्तुत कर रहे थे दुनिया जहान। और अब सूर्यांशी पांडे मेरे सामने बैठी हुई हैं, उनके पास कुछ ताजा खेल जगत की खबरें हैं।
राजेश जी, आज जो खेल की खबर है उसमें अर्जेंटीना, अगर फुटबॉल की बात करें तो अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से ब्रेक लेने का फैसला किया है। मेसी की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि वो आगे खेले जाने वाले मैचों में अर्जेंटीना की टीम का हिस्सा नहीं होंगे। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि मेसी अब दोबारा इंटरनेशनल फुटबॉल में वापसी कब करेंगे, और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब मेसी ने ऐसे ब्रेक लिया है, जबकि 2016 में चिली से कोपा कप का फाइनल हारने के बाद भी मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल को अलविदा कहा था, लेकिन अपने फैंस की अपील के बाद वो उन्होंने वापसी की थी। और अब अगर हम बात करें डिजिटल, हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, लेकिन अब हम फेसबुक जो है वो अब स्पैनिश फुटबॉल लीग जो ला लीगा है उसको सारे राइट्स उसको मिल चुके हैं, और अब ये ला लीगा लीग आपको टीवी पर नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म फेसबुक पर दिखाई देगा।
जी बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यांशी पांडे। फिलहाल मुख्य समाचारों का समय नहीं बचा है, मैं राजेश जोशी आपसे अनुमति चाहता हूं। इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने। कल सुबह मुलाकात होगी भारतीय समय के मुताबिक 6:30 बजे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार, शुभ रात्रि।